गोकुलपति के विच्छेद अब सहा नहीं जाता। प्राण निकलना चाहता है, निकलते नहीं। हृदय टूट रहा है, फट रहा है, जैसे कालकूट बीच हो, उस बीच में उतनी कड़वाहट नहीं है जो कि कृष्ण के विरह में है। अब तो देखते हैं कि बचना अब असंभव है। अब इस व्यर्थ जीवन को प्रत्याग करना ही अच्छा है। आशा थी ये आएंगे कल तक, अब वो आए नहीं। वर्ष हो गया, कितने वर्ष, अब तो जरूर मरना है। ललिता जी उत्तर उनको धैर्य दे रहे हैं। सखी, देह करने से, देह का त्याग करने से कृष्ण आ जाएंगे, मिल जाएंगे। तुम्हारे मर जाने से आ जाएंगे तो ठीक होता, तुम मर जाती नहीं? तो प्राण को छोड़ने से वो तो छत पटाने से भी आएंगे नहीं। श्रीमती जी ने कहा, हमारा विश्वास जरूर है कि वो जरूर आ जाए मरने पर, क्योंकि मरने पर जिस चीज की चिंता करते हुए आदमी मरता है वही चीज को प्राप्त होता है, पहले बतलाया था। स्मरण करते हुए जब अपने शरीर को छोड़ देता है तब फिर उसी को प्राप्त करता है। स्त्री की चिंता करते करते स्त्री शरीर मिल जाता है, पुत्र की चिंता करते करते पुत्र हो जाता है। तो जब मैं मरूंगी और उन्हीं का चिंतन करते हुए मरूंगी तो जरूर पाऊंगी ना, इस जन्म में नहीं पाया मर करके पाऊंगी। हमको ये भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, मैं इसी संकल्प को लेकर के मर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि एक बात करना, तुम लोग, मैं जरूर मरूंगी, हम मिलकर मर करके मिलूंगी। तब एक बात तुम लोग करना, यदि मैं मर गई बीच में तो हमारा शरीर में जो मट्टी है, मट्टी को क्या करना, मट्टी को लेकर के, ये तो गल जाएगा ना शरीर, पांचों पांचों में मिल जाएंगे। तो शरीर की मट्टी को लेकर के यहाँ पर कृष्ण आजकल मथुरा में है, चलते फिरते हैं, उस मार्ग में उस दे देना, जैसे वो चले तो उनको पैरों में मैं पड़ता हूं और वो चरण जुगल उनको मैं लपट जाऊं धूलि बन करके। ओह, हमारे शरीर में जो पानी है वो पानी कहाँ मिल जाए, यहाँ पर नंदनंदन यमुना में स्नान करते हैं, उस पानी में वो मिल जाए, यहाँ पर कृष्ण अवगाहन करें, तो मैं उनके मुख में चुंबन करूं और उनसे लिपट जाऊं अंगों में। और जब स्नान करके आए, जब दर्पण में अपना शरीर देखें, मुख मुखारविंद देखें, उस दर्पण में मेरा तेज मिल जाए अग्नि। आकाश कहाँ मिले, मथुरा में जहाँ चलते फिरते हैं, और रात में विशेष करके जहाँ शयन करते हैं, उस शयन के घर में आकाश में हमारा आकाश मिल जाए, मैं उनसे शरीर में घुल मिल जाऊं। और इसमें जो हवा है वो कहाँ जाएगी, कोई उनको साल का वृक्ष का जो पत्ते हैं, जो इसको जो पंखा करते हैं, उस विजन में मैं समा जाऊं पंखे में, हवा में। यदि कोई हवा करे तो उस विजन से कृष्ण के अंगों में लग जाऊं, हमारा जीवन के साथ हो जाए। और मरने के बाद में कदम्ब के वृक्ष में हमारे शरीर को टांग देना, यदि कभी, हाँ, कदम्ब के वृक्ष में, समाल के वृक्ष में यदि कभी आएंगे तो देखेंगे ये हमारे विरह में तड़प की इस प्रकार से मर गई। और ये कहते 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 देखा जे कौआ उड़ करके जा रहा है, रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन किया, कौआ को बुलाने लगी, ओहो तू मथुरा जा रहा है, सुनो सुनो सुनो, जरा मेरी बात सुन जाना और शाम से ये मेरी बात कह देना। देखो इस रास्ते से जाना, ठीक एकदम मथुरापुरी में पहुंच जाओ, वो जहां पर कृष्ण है। देखो यदि किसी के घर में आग लग जाती है, आग लग जाती है, ये कहना उनसे संदेह करें, किसी के घर में आग लग गई तो उसका कर्तव्य क्या है, उसके घर में जो गृहपालित पशु है, सुख है पिंजरे में है, सुख पक्षी तोता मैना या गाय बंधी हुई है, जहां आग लगी तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए, उसको खोल देना चाहिए, जहां तहां भाग जाए नहीं? तो हमारे इस देह में आग लगी है, किसकी, विरह की आग लगी,
और इसमें जो पक्षी था वो क्या पक्षी है? प्राण। प्राण मेरा वो पक्षी है। उन्होंने इस पक्षी को इस शरीर में मिला लेकर के दरवाजा बंद करके रख दिया है। अब ये प्राण छटपट कर रहा है निकलने के लिए, विरह की आग में जल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। उनसे जरा जाकर के कहना कि मेरा प्राण रूपी पक्षी शरीर में मर रहा है, तड़प रहा है, उसे जरा खोल करके तो आए। कहिए निकल जाओ, प्राण तुम्हारे निकल जाए। अरे तो प्राण में अर्गला मने वो भीतर से वो बंद है, उसमें लगाया जाता है ना चटकनी या क्या होता है, अर्गला उसको कहते थे। पीछे से दरवाजा बंद कर दिया, इधर में तो सिकल रहती है, पीछे से लकड़ी का एक डंडाला है लकड़ी का, और उसे लगा दिया, उसको कहते हैं अर्गला। तो अर्गला को खोल जाए, अर्गला क्या है? उन्होंने ये कहा कि कल मैं आ जाऊंगा परसों, यही अर्गला है। वो आ करके कह दें या संदेश पूछ करके आओ, जो नहीं आएंगे ये कह दें और हमारा प्राण झट निकल जाए। कब तक ये प्राण पक्षी हमारा ये तड़पता रहेगा? ये कहते 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 बस मूर्छित हो गए। उद्धव जी देख रहे हैं, जमुना टटनी कुले खेली कदम देर, खेली का कदम है, शीतल मंद सिकंध बह रही है। ओहो हमें वहीं पर ले चलो, जमुना के किनारे, कह रही है। कहते कहते ये मूर्छित होकर के फिर बक बक मन बक बकाने लगते हैं आदमी ना, होश नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता, कुछ अनर्गल बकने लगे। वहीं पर ले चलो, वहां पर एक बात करना, हमारे शरीर में जमुना की मिट्टी चारों तरफ लगा देना। हम लोग दोनों एक ही साथ में बहुत दिन उसके अंदर में बिहार किया खेला, उसकी मिट्टी लेप देना और उसके ऊपर में श्याम नाम लिख देना सब जगह, हमारे सब जगहों में श्याम श्याम ये नाम लिख देना। और तुलसी मंजरी जो श्याम होती है वो तुलसी मंजरी उस पर दे देना। और हमें बेस्ट रन करके घूप चारों तरफ से घेर कर और श्याम 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 हरि यही कहें, मरते मरते मैं वो सुनते सुनते बस अपने शरीर को छोड़ ये कह करके, तब तो वो विलाप करती ही तो वो तो मूर्छित हो गए। सुखदेव गोस्वामी जी राधा जी का नाम उच्चारण नहीं किया है भागवत में स्पष्ट रूप से, कहा है तीन चार जगहों में। एक तो कहा है अने आराधित तो नूनम, जो आराधना करती है, जो कृष्ण के साथ में अकेले में गई है सब छोड़ करके ब्रजबालाओं को, उसने ही इनकी सबसे अधिक आराधना की है, इसलिए उनका नाम है राधा और उनके क्रिया को कहते हैं आराधना। बस वो आराधना शब्द में जो राधा एक जगह का है और एक जगह का तीसरे स्कंद में राधसा, जो प्रेम से कृष्ण की आराधना करती है उसको नाम है राधा, वो कृष्ण की सबसे प्यारी है, एक आया। और तीसरा जगह किंतु जरा बड़े स्पष्ट रूप से नहीं जानेगा कौन, जो रसिक है वही जानेंगे, जो मूढ़ है वो इस चीज को नहीं समझेंगे। तो कह रहे हैं काचित, श्लोक है श्रीमद्भाव काचित कृष्ण विरह में जो तड़प रही चिंतन करती, कृष्ण अंग संगमम की चिंता करती हुई, कृष्ण अंग की संगम की चिंता करती हुई कोई गोपी एकदम भाव में विधो कर करके कहने लगते हैं। यहां पर एक काचित शब्द है, काचित माने क्या, काचित माने कोई, और काचित का जो विशेष अर्थ है वो है क्या, का माने प्रेम सुख, प्रेम सुख आ का को आ चित, को माने प्रेम, संपूर्ण रूपी प्रेम से जो घिरी हुई है, जिसके भावों के द्वारा कृष्ण को बांध रखी है, उसका नाम है काचित, प्रेममयी जिनका स्वरूप है, कृष्णमयी जिनका स्वरूप है, लाजनी शक्ति है, इसलिए काचित माने श्रीमती राधिका, काचित कृष्णम कृष्ण को चिंतन करते हुई, कृष्ण संगमम, कृष्ण संगमम माने क्या, राधा जी अब उद्धव जी को देख करके विरह में प्रणाम करने लग गई। उद्धव जी आगे बड़े उनके चरण को
पकड़ करके उसकी धूली को लेने के लिए। और राधा जी क्या कर रही हैं, मूर्छित हैं, वो नहीं देखती कि उद्धव जी, किंतु देख रही भाव नेत्र से एक भ्रमर आकर के उनके चरणों के तारफ में मड़राने लग गया, मड़ा रहा है वो कहती हैं ध्यानती कृष्ण संगमम, देखा कब है उनत्र से कृष्ण मथुरा गए और वहां पर जदु कुल की कुमारियां कोई बड़ी सुंदरी रमणी कृष्ण से मिल रही है, कृष्ण से अंक में धारण कर रहे हैं और धारण करके उनके कुमकुम जो बस्तखल में लगी है उस रमणी के कृष्ण के वो माला में लग जाती है कुमकुम, और उसी कुमकुम पर बैठा हुआ ये एक भ्रमर है और वहां से उड़ करके राधा जी को सांत्वना देने के लिए यहां आता है दूध का कार्य करने के लिए। ध्यान को देख करके उस रमणी को, अब इसके बाद में कृष्ण हमारे पास में अन्य विनय करने आए हैं, इसको कहते हैं खंडिता। बहुत प्रकार की माननीय गोपियां होती हैं जिसमें कि एक प्रकार की बस एकदम रूठ गई, कृष्ण नहीं कुछ भी नहीं किंतु रूठ गई। पहले तो कहा उनके विरह में तड़प रही थी, अब उनकी चिंता करते 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 देखा जो सचमुच में कृष्ण को देखा, उस रमणी को देखा, भाव में विधोर हो गई और अंत में उनका बड़ा भारी मान था, कुछ क्रोधित हो गई, रुष्ट हो गई, रुष्ट हो करके और वो एकदम तिरछी नजर से देखने लगे। मनो भ्रमर आकर के उनके चरणों में जब भ्रमण करने लगा तो सोचे कि वो आए और लौट करके चले गए, मैंने उनको कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं किया और वो बिना मनाए हुए जब देखा जो मान बहुत अधिक है तो वो लौट गए और फिर अपने बदले में उस भ्रमर को भेजे हैं। अब उद्धव जी इसी बीच में उनके निकट जाकर के चरण पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, अब वो भाव नेत्र से देख करके वहीं पर उनको रोकती हैं। आयाति च मम निकटे जाति पर निन्नुच्य मथुरा नागरम, ओ चले जाते हैं मथुरा, फिर आकर के हमारे पास में आते हो, हमारे पास आने की तुम्हारी कोई भी आवश्यकता नहीं है। मधु पर इतो बंधु मात पिसंघ्री तपस्या, दस श्लोक उद्धव जी ने कहे। आज तो 6 बज गया ही हूं, मेरी इच्छा थी वो 10 श्लोक जो प्रेम के उद्गार हैं जिसको चित्र जल्प कहते हैं, श्रीमद भागवत का सार है प्रेम का, वो मूर्ति या 10 श्लोक है, तो ये कहने की इच्छा थी किंतु समय पूरा हो गया। भगवान की यदि इच्छा होगी फिर यदि कभी आऊंगा तो उन 10 श्लोकों को आप लोगों को सुनाने की कुछ चेष्टा करूंगा। साधारण आदमी इसके योग्य नहीं है, जब इसके लिए नारद और उद्धव भी योग्य नहीं है तो हम विजय में फंसे हुए लोगों के लिए तो बात ही क्या है, जो जगत से छोड़ करके प्रपंच को भगवान का चिंतन करने वाले हैं। हमारे सुखदेव जी जैसे ऋषि, उनको उन्होंने सुनाया ये सब, साधारण लोगों के लिए नहीं, और लोगों के लिए मना है नहीं, तब समाज के लिए थी जा मन सब ही मन के द्वारा भी इनको चिंता मत करो, विशेषकर जब तक पुरुष भाव है स्त्री भाव है तब तक इसको नहीं सुनना चाहिए, किंतु इसके सुना बिना गति भी तो नहीं। उद्धव जी कहते हैं या हमारे व्यास जी कहते हैं अथवा और लोग कहते हैं रसिक भाई, तो यदि नहीं कहेंगे तो जगत से चीज लुप्त हो जाएगी, काक कहां बैठता है नीम के पेड़ पर, उसका फल बड़ा पीला पीला और कड़वा होता है, वो किंतु काक वहीं पर बैठेगा। पार्टी में आम की अमौरी जहां है, यहां पके हुए सुंदर मीठे फल हैं, सुंदर मधुर से भरे पत्ते हैं, क्वेल उस पर बैठती है, वो नीम के पेड़ पर नहीं बैठेगी, और वहीं से वो कुक कुक करती है और वहां से वो काव काव करता है। तो जो लोग अरसिक हैं जिनको ब्रजरस से प्रेम नहीं है, वो लोग हमारी बातों को सुने में उठ करके चले जाएंगे, ये बेकार की बात है। इसलिए रसिकों के लिए मैं कह रहा हूं, कह रहे हैं वो, ये लोग सुनेंगे और यदि हृदय में कोई कामना वासना भी है तो सदा के लिए दूर हो जाएगी और कृष्ण का प्रेम वहां पर हो जाएगा। यदि श्रद्धापूर्वक इन कथाओं को कोई सुने तो हृदय में रही काम की भावना इत्यादि भी सदा के लिए दूर हो जाएगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। ठीक है आने दो। तो इसलिए हम भी जानते हैं कि जगत में बहुत कम अधिकारी इसके हैं, कम अधिकारी हैं। इसको दे दो, दे दो। तो अभी थोड़े से संक्षेप में, अब तो समय करीब करीब हो चुका है, तभी मैं एक श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या तो कर ही दूं। आरंभ कर देता हूं, फिर जब भी कभी आऊंगा तो विस्तार के साथ में इसका वर्णन करने की चेष्टा करूं। बहुत ही सुंदर चीज और सरस है और बड़ी गंभीर है। राधा जी इसको देखते हैं कि उद्धव जी आ रहे हैं चरण की धूली लेने, इधर भंवरा भी आकर के मड़ रहा है। राधा जी के नेत्र बंद हैं, भाव नेत्र से देख रही हैं। इसे उद्धव जी ने को दूत कृष्ण ने भेजा है। ग्रंथकार कहते हैं, टीकाकार, वो जो भ्रमर था और कोई नहीं, कौन था वो? मधुसूदन ही थे। बन करके गोपियों की प्रेम की महिमा को देखने के लिए, विरक्ति अवस्था देखने के लिए स्वयं भ्रमर बन करके आए हैं और उनकी प्रेम की बातों को सुन रहे हैं। राधिका जी कह रही हैं, मधु पकीतो बंधो मास पिसंघ्री। अरे मधु, अरे भ्रमर, तू कपटी का बंधु है, वो परम कपट है। और तुम मधु पकीतव बंधु, कितव मैंने होता है कपटी, धूर्त, छली। तो तुम कपटी का बंधु है, धूर्त का बंधु है, तुम धृष्टता कर रहे हो हमारे, आकर के हमारे पैरों को छूना चाहता है, हमारे पैर पवित्र हो जाएंगे। तू जल्दी यहां से दुर्भक्त, फटो यहां से, यहां तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। कपटी, वो एक कपटी और तू उसका मित्र बन गया। यहां पर मत ठहरो, यहां से जल्दी से चले जाओ, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुमसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, ना उसके साथ में कोई संबंध नहीं है। ये धृष्टता मत करो हमारे यहां बार बार, तो मना करती हूं, हमारा पैर छुओ। तुम्हारे प्रभु जो है ना, अरे मधुपति से बचपन से हमारा संग है, उनको तो खूब बचपन से हम जानती हैं। अरे तुम तो आज के अभी नए आए हो, तुम उनको क्या समझोगे? हम उनको पूरी तरह से समझती हैं। ओ, तुम मान नहीं रहा, तुम्हारा सिर कांप रहा है। तुम जैसे कि जो ये होता है ना मत पीने वाले, सिर कांपता है, पैर नहीं ठीक से चलता है और अंत संत बकेंगे, ऐसे तो तुम्हारा सिर कांप रहा है और तुमको ठीक से तुम्हारी बोली भी नहीं आ रही, स्पष्ट रूप से तुम बोल नहीं रहा, वो करता है, मैं समझती हूँ सब। तुमने अधिक मधुपान कर लिया, मैंने अधिक मत पी रखा है, मदिरा पी रखा है अधिक। तो मैंने कहा मुझे कहां मदिरा मिला, ये पान करो। अरे मधुपति से आया है ना, वहां पर तो मधु का भंडार है, मदिरा का भंडार है और उसका वो पति है स्वच्छ रूप, तुम उनके सेवक हो, प्रचुर परिमाण में वहां पर मिला होगा, खूब तुमने चढ़ा लिया होगा, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा है। ज्ञान नहीं है तुझे, ये कैसे किसी के पास में जाया जाता है? सखियां देखो, इसको जल्दी यहां से बाहर करो, ये मानता नहीं है, बड़ा दृष्ट हो गया है, सुनता ही नहीं है, इसको सरल मत समझो, है बड़ा छली, ऊपर से बड़ा बनता है ऐसा। अरे भाई कृष्ण का संग तो उसका संग हमने किया है ना, वो जैसे छल करता था ना, कितना भोला भाला बन करके आता था, तो हम सब समझती हैं वो उसका दूत उससे भी बड़ा है, उसका ये गुरु घंटाल है, उसको भी चकमा देने वाला है, ठगने वाला नहीं, तो उसका मित्र कैसे बन सकता है? कंस के मित्र कौन है? जरासंध, काल, जबन, बड़े बड़े बदमाश, दैत्य दानव है, जो जैसा होता है ना, ए मैन कैन बी नोन ए कंपनी, उसके एसोसिएशन से ये पता चलता है, उसके संगीत शासन से पता चलता है ये चोर है, चोता है, भला है कि अच्छा है। यदि उसके संगी साथी ठीक हैं तो समझना चाहिए कि अच्छा है, और उसके संगी साथी चोर, बदमाश, चुवाड़ी हैं, वो भी जरूर ऐसा होगा, समझ लेना चाहिए। एक भात एक हाड़ी में रसोई बन रही है, एक चावल निकाल लिया और उसको देख लिया, यदि वो सिद्ध हो गया तो क्या हो, समझना चाहिए, सब वैसे ही। तो एक आदमी की कंपनी के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा, उसके संघ के प्रभाव से हम जान सकते हैं। तो ये मैं उसको जानते, इसलिए तुम उसके दूत बन करके आए हो, तो मैं जानते कि उसको भी ठगने वाले हो, इसलिए तुमको उसने मित्र बनाया है। उससे तो काम हुआ नहीं, वो आया हमारे पास में, हमने अपने पास फटकने नहीं दिया, तो अब तुमको भेजा है, अब तुम हमको मनाने के लिए आए हो। अच्छा कि तो वो बंद हो, तुम कपटों के चूड़ामणि हो। अच्छा ठीक है, तुम हमें मनाने आए, तुमको पता नहीं ये कैसे आना चाहिए। माँ कितव बंध हो, माँ त्रिशांग्री हमारे चरणों को स्पर्श न करो। क्यों? अरे देखो तो वो कहता है जे स्वामिनी जी आप झूठा क्यों ऐसा कह रहे हैं, न तो हमारे प्रभु मधुपान करते हैं मदिरा और न मैं पान करता हूँ, झूठ मत बोल, हम लोग पकड़ लेती हैं। तुम्हारा ठीक चलना फिरना बोलना ठीक नहीं, और दूसरी तुम्हारे ये गोफ जो है उसमें क्या लगा रखा है, देखा कभी ऐना में देखो जो क्या है, उनके दो चार केस होते हैं यहाँ भौरों के, तो वो फूलों पर बैठा है और उसका तरंग जो है उस पर लग गया, तो अब वो कुछ पीला सा दिखाई पड़ता है, कुमकुम जैसा। तो कहते ये कुमकुम तुमको कहाँ मिला, बताता क्यों नहीं है, ये कुमकुम लगा करके हम माननीयों के पास में आया, हमने ध्यान में देखा ना, देखा वो देख रही है, पहले जो बतलाया मथुरा की रमणियों के साथ में गया था, दोनों मिले थे और उसका कुमकुम तुम्हारे इस पर लग गया, उसकी माला पर तुम बैठा, बस वैजयंती माला पर वो लग गया, उसको लेकर के हमको मनाने आया है। तो जानता नहीं ये कैसे मनाने, तुम स्नान करके क्यों नहीं आया, पवित्र होकर के आता तब मैं हम तुम्हारी बात को सुनती, तो तुमको तो होश नहीं है इसलिए तुम इसी स्थिति में आया। स्वामी जी हम तुमको दूर से ही प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो, निकट मत आओ। किंतु वो जाति की चंचलता से वो फिर मड़ाने लग गया। अब वो फिर थोड़ी देर के बाद में फिर मड़रा करके वहां पर गुंजार करता हुआ आया, तो कहता है ये तू कहां गया था हमारी सखियों को पैर पकड़ने के लिए, और वो हमें मना लेंगी। वो ऐसा करता था, उनका चरण भी छूने योग्य तू नहीं है, तू यहां से एकदम निकल करके चला जा मधुपुरी में, यहां पर तुम ठहर मत, उनका चरण भी छूने योग्य नहीं है। उद्धव जी मन में कह रहे हैं मैं प्रभु के निकट से आ रहा हूं, चरण कब स्पर्श करने का अधिकार हमें होना चाहिए। राधा जी भाव कर्ण कहीं उन्होंने क्या गलती किया, उनको ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे जब वो जदुओं की सभा में बैठेंगे उसमें मालूम पड़ेगा, जिसका दूत इतना पागल बुद्धि का लेश नहीं उसके सामने भी ऐसे, यदि उन जदपतियों ने देखा कोई ऐसा चिन्ह देखा तो वहीं से उनको भगाएंगे, सभा में रहने बड़े बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे, उनको जैसे होश नहीं तुमको भी ऐसे होश नहीं, उनको कहना का देना जरा सचेत रहे, नहीं तो वो छोड़ेंगे नहीं, उनका बड़ा अपमान कर देंगे सभा में ही। फिर कहते हैं सकृत अधर सुधायां पायित्वा, ओहो तो कहते हैं उन्होंने दोष किया, किया दोष तो ये किया, एक बार हम उसने हमें अपना अधर सुधा पान करा दिया और हम भोरी एकदम पगली सी बन गए, वो जगत को आकर्षण करने वाला है ऐसा उसकी अधर सुधा है, एक बार किसी प्रकार से यदि उसके मुखार बिंद में देखते हैं तो उत्तेजित आदमी होकर के उसको अधर सुधा का अपने आप पान कर लेता है, फूल बैठता है फूलों पर ये भ्रमर क्या करता है, फूल पर बैठा तो मधुआरण किया दूसरे फूल पर चला गया। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने खुद अपना अधर सुधा पान कराया, किस लिए, गोपियां मरे नहीं और अपने विरह में तड़फाए और उनको देख करके मैं आनंदित हूं। मछली पकड़ने वाले कुछ होते हैं, मछलियों को पकड़ लेंगे जीवित और छटपट करती रहेंगे और छटपट करते आनंद लगता है। जिनको दो पैर होता है उनको मनुष्य कहते हैं, चार पैर वालों को कहते हैं चौपाया, चौपाया जानवर, और जिनको छह पद है वो मूर्ख का भी मूर्ख, तो तुम मूर्ख का मूर्ख तुम है, क्यों आया यहां हमारे पास में चलेगा। एक श्लोक कहते हैं कपिंद्रम दिव्य धे लुप्त धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीयतः कामयानं बलिमपि बलिमत्वावेश्य यद्धं सुमतज सतलमसित सख्यै दुष्पज तत्कथार्थ।
मानो भौरा कर रहा है या उद्धव कर रहे हैं, स्वामी जी ऐसा आप मत कहें, वो ऐसे निष्ठुर नहीं है, वो तो आपके प्रेम के लिए आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप उनसे संधि कर लीजिए। इस पर कहते तुम्हारे प्रभु की बात से बतलाऊं कितने निष्ठुर है वो, कितना ठग है, कितने कैसे वो हैं, मैं तुम्हें बतलाती हूं। बतलाने लग गई राधा जी को, कुछ आवेश आ गया, कुछ उनके अंदर में कृष्ण के प्रति वैसा ही भाव आया। प्रेम की ये तरंगे हैं, ये निंदा नहीं कर रही हैं, किंतु ये मन में ये सब तरंगे उठती हैं, कह रही हैं अजी हमने सुना है काले लोगों से कभी प्रीति नहीं करनी चाहिए, मैं कालों की व्याख्या कुछ कर रही हूँ, बतला रही हूँ, ये भी श्याम भी तो काले हैं ना, श्याम काले हैं, एक था राम वो भी काला था, और एक थे कश्यप जी के पुत्र
बामनदेव
वो भी काला था। ये कालों की कुछ बातें बतलाऊं, सुनोगे, तुम्हारे प्रभु की कीर्ति कलाप क्रियाकलाप बतलाऊं। कभी भी कोई व्यक्ति, एक शिकारी भी व्यक्ति बंदरों को नहीं मारता, क्योंकि वो बानर है ना, नर अथवा उनका मांस कोई शिकारी भी कोई भी नहीं खाता, इसलिए उसका शिकार नहीं किया जाता। तो रामचंद्र जी ने किसका शिकार किया,
बाली
का, क्यों मारा, दोष क्या था उसका, अरे सामने दिल थे, बेतापूर्वक सामने से लड़ जाते, योद्धा की भांति लड़ते, और यदि मार डालते उसे मार डालते कोई बात नहीं थी, पेड़ की कोट में छिप कर और बाण मारा, और बेचारा वो लहू लुहान होकर के गिर गया, छटपट करता हुआ। तो जैसे आप लोग धार्मिक कहते हैं, रामचंद्र निकट आए, आप धार्मिक हैं कि महाप्यारे थे, आपके जैसा धार्मिक जगत में आज तक कोई जन्म नहीं लिया, एक छात्र कुल को आपने कलंक लगा दिया। अरे हमको किस लिए मारा, यदि कहते सीता जी को खोजना है तो रावण को तो मैंने अपने बगल में दबा रखा था, एक बार राम से लड़ने के लिए मैं सूर्य को हमको पेड़ की ओट में छोड़ करके मारा, और तरह तरह के अपवाद तो गोपियां कह रही हैं, इनको कृष्ण नहीं मान रही है, कृष्ण ही उस जन्म में लिए थे, या हमने कहीं सुना है, कौन कहा, जुगमाया ने कहा है, भृगु जी ने कहा है, या कोई कोई कहते हैं कि तुम भी वही भगवान हो, उस जन्म में भी तुमने ऐसा किया मारा उस बंदर को जिसका कोई शिकार नहीं, बड़े वीर बनते हो। अच्छा अच्छा ये बतलाओ शूर्पणखा की नाक किस लिए काट ली, मृगयु कपिंद्रम दिव्य भे लुब्ध धर्मा स्त्रियम अजित विरूपा स्त्रीय कामयानम, कहते हैं कि शूर्पणखा की नाक कान किस लिए काट ली, बड़ा सुंदर केश को सवार करके बांधा, त्रिलोक को मोहन करने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाया, अब बना करके सीता जी के हाथों में अपना हाथ लेकर के बड़े प्रेम के साथ में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, ये देखो तो वो स्वर्ण का एक हिरण आया, इसे जीत पकड़ लाओ, मैं अयोध्या में ले जाऊंगी, भरत जी को पहार दूंगी, भरत देख करके खुश हो जाएगा, मैया हमारी सासों को देंगी तो वो खुश हो जाएंगे, हमारे उपवन में ये रहेगा, और यदि पकड़ न सके तो मार करके भी लेना, तो आप इस पर बैठ करके पूजा अर्चना और संध्या करेंगे, किसी प्रकार से इसे छोड़ी मत जरूर लाइए, जाते क्यों नहीं है, प्रिय चल प्रियतम जल्दी से जाओ, जल्दी चलाओ नहीं कहीं भाग जाएगा, अरे देखो वो भागा चली गई ना, और ने? और उसके पहले की बात, उसके वशीभूत होकर के चला मारने के लिए सोने का हिरण, ऐसा तो, और जब वो चली गई ना सीता जी, राउंड ले गया ना कैसे, आज देखा विलाप कर रहे हैं सीता जी, लक्षण लक्षण जहां हो जल्दी आओ, राम तुम आर्य तुम कहां हो, विलाप करते चली जाए, और सीता जी जब आते हैं देखते हैं कि उसमें नहीं है, लक्ष्मण जी के साथ में सीते 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 कर रहे हैं, कहां गई तू, गोदावरी से पूछ रहे हैं, पेड़ों का आलिंगन कर रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, राम भूल गए जो मैं राम हूं,
भगवत्ता कहां चली गई। ऐसे स्त्रियों को मैं मोहित होकर के और जब सुल्पना का तुम्हारे रूप को देख करके मुग्ध करके आ गई तो तुमने क्या किया। हमारी तो भाई शादी हो गई है, हमारा भाई अभी उसको स्त्री नहीं है। ये नहीं बतलाया जो कुआरा है, नहीं ये बतलाया जो शादीशुदा है, उसकी स्त्री नहीं है, उसके पास जाओ, हमसे कम नहीं है। और ये सचमुच इसे शादी नहीं तो उसके पास चली जाऊं। तो उनका रूप में देखा आराम से कम नहीं किंतु है यही बड़ा सुंदर। अच्छा तो ये बात होकर उन्होंने कहा जैसे हमारी स्त्री से शादी हमसे शादी करेगी तब तो हमारी तो स्त्री है या तुम्हारी सौंत रहेगी, सौंतों के साथ में अच्छा नहीं है, तुम चली जाओ, राज रानी बनेगी। वहां गई लक्ष्मणी, अरे मैं तो उनका दास हूं, तू दासी बनेगी, अरे एक नहीं तो दस शादी करें। फिर गई तो उन्होंने फिर लौटा, बड़ी भयानक रूप हो गई। जब तक इसको खा नहीं लेंगे तब तक शादी नहीं करें, विकट रूप धारण किया। राम ने कहा लक्ष्मण अधिक स्त्रियों के साथ में अधिक दिलगी नहीं करनी चाहिए। बस उन्होंने तलवार से उसकी नाक और ये कान दोनों काट लिए, पूछ दिया, विरूप हो गई। स्त्रियम अधिक विरूपा स्त्रिया कामया नाम, कामी पुरुष होकर के इतना क्यों बनाया जबकि स्त्रियां लुप्त हो जाती। उसे कह देता मेरी शादी होकर मैं शादी नहीं करूं, ना कन काटने की क्या जरूरत थी। बड़ा स्त्री गीत बनता है देखा है।